ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मानं प्रकृतिषु अद्धा निधाय श्रेया आपनुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेव हिताहितः आत्मानं प्रकृतिस्वद्धा निधाय श्रेयाप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेव हिताहितः आत्मानं प्रकृतिस्वद्धा निधाय श्रेययाप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेव हिताहितः।
श्लोक संख्या 18 शब्द आत्मानं स्वयं प्रकृतिषु इन सात राजसी तत्वों के अंतर्गत अधा प्रत्यक्षत निधाय रहकर श्रेय परम सुख आत्मयात प्राप्त कर सकता है। राज्ञा राजा के द्वारा तथा उसी प्रकार वैसे ही प्रकृतया प्रकृतियां नरदेव हे राजन आहितधय संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भेंट करके। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हे राजा हे मानवता के ईश, जब राजा अपने पार्षदों का प्रत्यक्षता आश्रित रहता है अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षता आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटे प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे भी सुखी रहते हैं। आवृत्ति करेंगे। हे राजा मानवता के ईश, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षता आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटे प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे भी सुखी रहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञाएं देनी चाहिए अपितु कभी कभी उनके उपदेशों का भी पालन करना चाहिए। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वे राजा पर निर्भर रहें और इस अन्योन्याश्रिता से प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो सकता है।
अंगिरा ऋषि आए हैं महाराज चित्रकेतु के पास। अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बहुत शक्तिशाली मुनि हैं। तो राजा चित्रकेतु नीचे बैठे फर्श पर और मुनि को ऊंचे आसन पर बैठा है और जमीन पर बैठ करके वे मुख को नीचे किए थे, उनका मुख उदास था। तो अंगिरा जी उनसे समाचार पूछ रहे हैं। कई प्रकार से वैकल्पिक प्रश्न किए। वे कह रहे हैं कि राजा कैसे सुखी रहता है और प्रजा भी। तो राजा विश्वास करता है अपने मंत्रियों पर, अपने पार्षदों पर, और पार्षद और मंत्री वे सभी राजा के आश्रय में रहते हैं, तो वे भी सुखी रहते हैं। राजा अपना काम करता है और मंत्री अपना कार्य करते हैं। इस तरह एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। राजा को कभी कभी मंत्री आज्ञा भी देते हैं और राजा उसे स्वीकार करता है और आज्ञा का पालन भी करते हैं। सर्वोपरि तो राजा है, तो राजा के आश्रय में रह करके मंत्री प्रजा वगैरह सुखी रहते हैं और मंत्री पर आश्रित रहता है राजा। वे कभी कभी आज्ञा भी देते हैं। तो अंगिरा मुनि पूछ रहे हैं राजा से, अपि दारा प्रजा मात्या भृत्या श्रेण्योथ मंत्री। हे राजन, आपकी सभी पत्नियां बस में है ना, और आपके सभी मंत्री अमात्य आपके बस में रहते हैं ना, कोई आपसे विद्रोह नहीं किया है ना। ये सब पूछते पूछते उन्होंने कहा कि आपकी प्रजा और आपके नगर में रहने वाले लोग पौधा और देश में रहने वाली प्रजा आपके अधीन है ना। और अंत में उन्होंने पूछा, आत्मजा वशवर्तिन, आपके सभी पुत्र आपके वश में है ना। कोई पुत्र हुआ ही नहीं है, पुत्र गण कह रहे हैं। ये मुनि लोग भी कभी कभी मजाक करते हैं, आपके सभी पुत्र आपके वश में है ना। उस राजा को कोई पुत्र नहीं था, पर पूछ रहे हैं ऐसे। विवाह तो 1 करोड़ हुआ है और फिर भी एक भी संतान नहीं है। वे राजा थे, अनेक सेठ के सेठ विवाह किए, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 5,000, ऐसे स्त्रियों से विवाह किए। पर संयोग के बात थी, उन स्त्रियों से कोई संतान नहीं है, सभी बैरन निकल गई, बंध्या हो गई। ऐसा होता है, ईश्वर की कृपा है, किसी किसी को फैमिली प्लानिंग करना पड़ता है और किसी को एक भी पुत्र नहीं होता है। तो राजा था और विवाह किया संतान के लिए, सब जगह से विवाह किया, महाराष्ट्रियन लड़की, उत्तर प्रदेश की लड़की, उड़िया लड़की, कहीं से बाकी नहीं रह गया, सारे भारत से, बल्कि विदेश से भी वो बहुत सी स्त्रियों को दिया। इस तरह आप सोच सकते हैं, 1 करोड़ विवाह करना कितना मुश्किल का काम है, लेकिन राजा था इसलिए किया। पर 1 करोड़ रानियों के होते हुए भी 1 पुत्र नहीं हुआ, सब संयोग से बंध्या निकल गई। तो मुनि पूछ रहे हैं, इतना विवाह किए हैं, जरूर पुत्र बहुत होंगे। ये मन में सोचे कि इसलिए पूछ रहे हैं, आपके सभी पुत्र वश में है ना। सबसे पहले दारा कहे, आपकी स्त्रियां आपके वश में है ना। स्त्री वश में न रहे तो राजा की भी हालत बिगड़ जाती है। स्त्री को वश में रहना जरूरी है। आपने रामायण में पढ़ा होगा महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे संपूर्ण पृथ्वी के, और उन्होंने अपने गुरु से परामर्श किया, सभी मंत्रियों से पूछा, सबने राज दिया कि राम को राज दे दीजिए। राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर लिए राजा दशरथ। उनकी तीन रानियां थी, पर एक रानी के मन में असंतोष हो गया। वो नहीं चाहती थी कि राजा का प्लान सफल हो। जिस राम को राजा दशरथ राजा बनाना चाहते थे, उसी राम से उसको द्वेष हो गया। वो नहीं चाहते थे कि राज्याभिषेक हो। भरत जी अपने मामा के यहां गए थे अपने भाई शत्रुघ्न के साथ, और इधर कई ने प्लान कर लिया कि राज्याभिषेक नहीं होगा, ये फेस्टिवल नहीं होगा, राम को राज नहीं वन में जाना पड़ेगा। इतना बड़ा विघटन हुआ, राजा दशरथ इसी शोक से मर गए। राम जब वन में चले गए तो राजा दशरथ मर गए। इतना बड़ा कांड कर दिया एक स्त्री ने। इसीलिए अंगिरा जी पूछ रहे हैं, आपकी सभी पत्नियां आपके वश में है ना, और आपके सभी पुत्र आपके वश में है ना। मैं आपको बहुत खिन्न देख रहा हूं, आपका मुख पीला पड़ा हुआ है, कोई ऐसी कामना आपके मन में जरूर है जो पूरी नहीं हुई है, आप अलब्ध मनोरथ हैं। मैं आपके चेहरे से समझ रहा हूं आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है। एक बहुत बड़े राजा से एक मुनि पूछ रहे हैं। ये मुनि सत्य लोक से आए थे, राजा के पास सब कुछ था, फिर भी वे बहुत उदास थे। हृदय में जब कोई कामना हो जाती है तो व्यक्ति को उदास कर ही देती है। भगवान ने कामना को अग्नि कहा है, कामाग्नि। हृदय में लालसा जब किसी चीज की हो जाती है तो उसे नहीं प्राप्त होने पर व्यक्ति खिन्न रहता है। तो एक बहुत बड़े सम्राट से मुनि पूछ रहे हैं, आप क्यों उदास हो? लब्धे अलक्ष कामता, आपके मुख की उदासी से मैं समझ रहा हूं कि आपका काम आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। इसके बाद वे कहने लगे, असल में जिसका मन वश में है सभी उसके वश में रहते हैं। मैं समझ रहा हूं कि राजन तुम्हारा मन वश में नहीं है, क्यों खिन्न हो, क्या आवश्यकता तुमको तुम्हारी है? तो राजा ने कहा, हमारे पास सब कुछ है, जो लोकपालों को कामना होती है, इंद्र को, वरुण को, इन सब लोकपालों को जो चीज चाहिए, जो इच्छा होती है, वो सारी वस्तुएं मेरे पास हैं। लेकिन क्या कहूं मुनि, हमको बेटा नहीं है। वो रोने लगा राजा, हमको ये सारी संपत्ति सारा वैभव, सारी स्त्रियां, राज सुख नहीं दे रहा है क्योंकि मैं बिना पुत्र के हूं। जैसे किसी व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से भूख लगी हो, प्यास लगी हो, तो उसको भोजन के अलावा और चीजें अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार हमको ये राज्य, स्त्री, धन, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हमको बेटा नहीं है। हमने सुना है कि जिसको पुत्र नहीं होता है वो नरक में गिरता है। तो आप हमको नरक से उबार दीजिए। आप बहुत समर्थ ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप कृपा करके हमको एक पुत्र दीजिए। इतना कह करके राजा रोने लगा, मेरे पूर्वज नरक में गिरे हैं, मैं नरक में गिरूंगा, पुत्र दे करके हम सबको पार कीजिए। तो वे मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है, बहुत कृपालु है। सुखदेव जी कहते हैं, इत्यर्थितः स भगवान कृपालु ब्रह्मरः सुतः। कृपा स्वाभाविक है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनको सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान विभु समर्थ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ऐसा कहकर तो उन्होंने एक चरु पकाया, खीर पकाया, और पका करके कहा कि इसको एक रानी को देना, बस सबसे बड़ी रानी को, जिसका नाम कृतद्युति था, इसको खिला देना। तुमको एक पुत्र होगा, लेकिन राजन वो पुत्र तुमको हर्ष सुख दोनों देगा। हर्ष सुख प्रद पुत्र होगा। पुत्र से तुमको सुख भी होगा और दुख भी। इतना कह करके वो मुनि चले गए। तो राजा ये सोचा कि पुत्र होगा तो हर्ष होगा ही, और मेरी बात नहीं मानेगा, बच्चा उदंड हो जाएगा, तो इससे शोक होगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये तो अच्छा ही है, बेटा होगा ना भले नालायक निकल जाए। लेकिन मुनि का संकेत था कि वो तुरंत मर जाएगा और राजा को बहुत बड़ा शोक होगा। लेकिन वे नहीं समझे, ठीक है बेटा होगा, अगर उदंड होगा, आज्ञा नहीं मानेगा तो चलेगा। इस प्रकार अंगिरा जी कृष्ण भावना की भूमिका तैयार कर रहे हैं। भूमिका, भूमि, जैसे कहीं पर बीज डाला जाता है तो पहले भूमि का निर्माण होता है, भूमि को जोतते हैं, सिंचाई करते हैं, समतल करते हैं, घास निकाल देते हैं। तो इस तरह से अंगिरा जी चित्रकेतु महाराज को कृष्ण भावना देना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं, लेकिन वो योग्य नहीं है, उनको योग्य बना रहे हैं। जब ये पुत्र प्राप्त करेंगे और सुख में हो जाएंगे, बाद में पुत्र मर जाएगा तो इनको बहुत बड़ा शोक होगा। इसी शोक की अवस्था में वे नारद जी के साथ आएंगे, अपने भाई के साथ। श्री नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी आकर के कृष्ण भावना का दान दिए, इनको मंत्र सिखाए, भक्ति का रहस्य सिखाए। तो 7 दिन में विद्याधरों के अधिपति हो गए। और लाखों वर्षों तक घूमते रहे। बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ एक विमान पर घूमते थे, परंतु उनमें कहीं आसक्ति नहीं थी। भगवान का कीर्तन करने के लिए, गान करने के लिए अनेक सुंदरियों को अपने साथ रखते थे, केवल भगवान की भक्ति के लिए। और सबके साथ वे चले गए एक बार कैलाश। वहां पर भगवान शिव को देखे, पार्वती जी को अपने जांघ पर बैठाए थे, तो हंसी उड़ाने लगी भगवान शिव की। ये देखो, ये सभी मुनियों के गुरु हैं, आचार्य हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, इनका घर भी नहीं है, लेकिन स्त्री को अपने जांघ पर बैठाए हैं। ऐसा कहकर हा 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 हंसने लगे। वही माता पार्वती जी थी, उनको दुख लग गया। चित्रकेतु तो शिव जी के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन माता पार्वती को दुख लग गया। उन्होंने साफ दे दिया, यदि शिव जी धर्म का रहस्य नहीं जानते हैं तो ये नारद मुनि भी नहीं जानते हैं, भगवान कपिल देव भी नहीं जानते हैं। ये सब लोग शिव जी के सत्संग में आते हैं, कोई मना नहीं करता है, और तुम जगत गुरु बन गए हो, तुम नियम बता रहे हो, तुरंत राक्षस हो जाओ, असुर योनि में चले जाओ। चित्रकेतु महाराज ने माता पार्वती से क्षमा मांगा कि माता जी, मेरे बात से आपको दुख लग गया, लेकिन आपने जो कहा वो होने वाला था, उसके लिए मुझे कोई शोक नहीं है, पर इतनी कृपा कीजिए कि जहां जाऊं भगवान में हमारी रति रहे, प्रेम रहे। न कह करके चले गए। तो कृष्ण भक्ति उत्पन्न करने में बहुत प्रकार की आवश्यकता होती है। यह राजा सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे, पर भक्त नहीं थे। अंग्रेज ने इस तरह पुत्र दे करके, उनको सुख में डाल करके भक्ति के लिए तैयार किया, तब वे नारद जी से उपदेश ग्रहण किए। और उस बच्चे ने जो मर गया था वो स्वयं उपदेश किया, नारद जी जिला दिए उस बच्चे को, ये सब कथा है। तो बच्चा कहने लगा कि मैं बहुत शरीर ग्रहण किया, बहुत बार पुत्र बना, कौन मेरा पिता है? आप तो एक बार केवल मेरा पिता बने, ऐसे ऐसे पिता लाखों बार हमारे हो चुके हैं, तो किसको पिता माने? ये सब संबंध अनित्य है। इस प्रकार का उपदेश पा करके राजा चित्रकेतु बहुत बड़े भक्त हुए। मनुष्य ने विद्याधरों के नायक बन गए और इन्हें भगवान शंकरसन का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान शंकरसन की स्तुति किए। ये सब कथाएं हैं बड़े विस्तार से। हम लोगों को भी बहुत प्रयास करके भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। एक भक्त हमसे कहे कि ये मैराथन का महीना है, हम लास्ट ईयर बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन की गीता डिस्ट्रीब्यूट की, तो हमने कहा कि ठीक है, वही शरीर अब भी है, वही हाथ है, वही बाणी है, वही आंख है, फिर प्रयास कीजिए इस साल में। लोगों से कहना लेने के लिए तो अपना धर्म है भगवान की सेवा करना, इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है मैराथन में भगवान के पुस्तकों का, विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज का प्रचार होना चाहिए। प्रचार होने पर लोगों में भक्ति भावना आ जाएगी, और भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण भावना प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा ये जीवन तो क्षणभंगुर है, ये तो रहेगा नहीं। आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है, भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है, वो तो रहेगा, लेकिन ये शरीर और धन ये सब नष्ट हो जाएगा, ये तो होना ही है नष्ट। जब तक है भगवान की सेवा में इसे लगाना चाहिए। बड़े उत्साह से भगवान के बारे में जो पुस्तकें हैं उनका प्रचार करना है। इसमें प्रायः भक्त नवजुवक हैं, शरीर में शक्ति है, वाणी में ओज है, इसके लिए इन सब एसेट का, इन सब वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। पुस्तक ले लेकर के इन लोगों में फैलाना है, यही हमारा धर्म है। सालों भर अपने घर के काम धंधे में व्यस्त रहते ही हैं, लेकिन ये भगवान का काम करना चाहिए। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा उपदिष्ट इस भगवद गीता के ज्ञान को लोगों में प्रचार करेगा, उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई नहीं है, कोई नहीं होगा, है। सबसे बड़ा प्रिय भगवान का वही है जो गीता का प्रचार करता है। श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय से आप सभी इसमें पढ़ जाइए भगवद गीता बांटने पर। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे जब उनकी पुस्तकें फैलती थी, लोगों में जाती थी, लोग पढ़ते थे, तो इससे बहुत प्रसन्न होते थे। हमें काम करना है, हमें सेवा करनी है भगवान, तो इस कार्य के द्वारा सेवा करें। जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब उत्साहपूर्वक अपने बताया भगवद गीता के ऊपर उसका प्रचार। महाराज जी, जैसे हम जाते हैं प्रचार के लिए और लोगों को कहते हैं कि आप इसको बांटिए, अभी नया साल होगा, क्रिसमस आएगी, तो उसमें आप अपने दोस्त को, परिवार को इसको गिफ्ट करिए भगवद गीता। तो प्राय वो लोग यही कहते हैं कि महाराज जी कि ये बहुत पवित्र ग्रंथ है, इसको हम देंगे, अगर वो लोग उसका कहीं रख देंगे या इसका कुछ पाँव में आ गया कि ऐसा कुछ बोलते हैं कि इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो उसको किस तरह हमें जवाब देना चाहिए?
क्या कहते हैं, पैर में डाल देंगे?
नहीं, कई लोग जो होते हैं उसको पढ़ते नहीं है, ऐसे रख देते हैं, तो कई इसको उसका ऐसे बोलते हैं कि हम तो दे देंगे लेकिन वो लोग पढ़ेंगे नहीं, तो और कोई कहीं रख देंगे और किसी का बच्चा उसके साथ खेलने लगेगा तो हमको पाप लगेगा उससे, क्योंकि ये बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो भगवान हमको तो पाप नहीं देंगे। बस तो उस समय हम बहुत ये हो जाते, किस तरह इनको इस प्रश्न को उत्तर देना।
तो भक्त लोग इसका उत्तर देंगे, हम क्या कहें? ठीक है, आप अपना काम कीजिए, ये बांटने का काम है, वो अगर कुछ कहते हैं तो सुन लीजिए, लेकिन उस जगह से फिर अन्य जगह कहते रहे, सब जगह यही जवाब नहीं मिलेगा ना?
प्राय महाराज यही जवाब मिलता है, 100 में से 20 लोग।
नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग तो नहीं लेंगे, पढ़ेंगे लेकर के, पैर के नीचे नहीं रखेंगे। देखेंगे, फोटो भी देखेंगे, कोई कुछ न कुछ पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। तो अपना जो काम है वो हमें करना है, कहना चाहिए, दिखाना चाहिए पुस्तक, अपने हाथ का प्रयोग करना चाहिए, अपने बाणी का प्रयोग करना चाहिए, अपना काम है वो करना चाहिए, फल क्या होगा भगवान जाने, प्रचार करने की लालसा होनी चाहिए, कहीं सफलता मिलेगी कहीं सफलता नहीं मिलेगी, परंतु नहीं सफलता मिले उसी को प्रमाण नहीं मान लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी प्रचार किए तब न इतना प्रचार हो गया, लास्ट ईयर तक प्रमाण है कि जब जब मैराथन आया, प्रचार हुआ, गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अच्छी तरह से, तो इस साल भी होना चाहिए। वही सब भक्त लोग हैं, वही शरीर है, वही वाणी है, सब है, आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए।
धन्यवाद महाराज।
महाराज जैसे अंगिरा मुनि, नारद मुनि ये त्रिकालदर्शी है, और महाराज चित्रकेतु ये ज्ञानियों में इनकी गणना होती है, क्या ये हो नहीं सकता कि त्रिकालदर्शी सर्वदर्शी महात्मा गण किसी भक्त को सभी प्रकार से स्पष्टतया सब बता दें कि ऐसा करने से तुम्हें फिर इस प्रकार का दुख भुगतना पड़ेगा, और ये जो पुत्र होगा ये अंततोगत्वा अकाल मृत्यु का शिकार बनेगा, तो तुम ये सब प्रपंच छोड़कर हरि भक्ति में लग जाओ, ऐसा अगर कह देते तो महाराज स्वीकार नहीं कर लेते?
नहीं, वो जानते हैं कि किस स्थिति में स्वीकार करेगा। उस समय तो वे पुत्र के लिए रो रहे थे, तो हमको बेटा चाहिए बेटा चाहिए। उस समय हरे कृष्ण सिखाने पर वो मानने वाला नहीं था, अपने आप उसको अनुभव कराना, उसकी भूमिका बनाना, ये काम था अंग्रेज जी का। अर्जुन को भी जब शोक हुआ कुरुक्षेत्र में, तब ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान दिए। तो ऋषि लोग सब जानते हैं किस स्थिति में क्या होगा, तो जानते थे कि इसको पुत्र मिलेगा और पुत्र मर जाएगा तब ये ठीक से ग्रहण करेगा तत्व ज्ञान। जब तक अन्य कामना मन में है तब तक मुश्किल है भक्ति का प्रचार। संसार का अनुभव करना ये भी एक ज्ञान है कि पुत्र परिवार सब क्षणभंगुर है और दुखद है, ये तो नष्ट हो ही जाएंगे लेकिन जब तक है तब तक दुख देने वाले हैं। स्त्री चाहे बेटा कोई भी दुख ही देते हैं, पर लोगों को इसका अनुभव नहीं है। तो इसीलिए अंग्रेज ने पहले अनुभव कराया बेटा दे करके। हमें पुत्र चाहते थे, पुत्र जब हो गया तो स्त्रियों में ही द्वेष परस्पर हो गया। और राजा जब एक रानी के घर में जाते थे तो अन्य को बहुत बड़ा जलन हुआ कि उसको ज्यादा मानते हैं, और उनकी पत्नियों ने ही उस बच्चे को विष दे दिया, मर गया। वे नारद जी की आज्ञा का पालन किए, 7 दिन मंत्र जपे, 7 दिन में ही सिद्ध हो गए। हम लोगों को भी श्रील प्रभुपाद जी ने मंत्र दिया है लेकिन उतनी उत्कंठा से जप नहीं कर पाते हैं। केवल 7 दिन में सिद्ध हो गए, घर द्वार तो एक क्षण में छूट गया, सारी माया मोह ममता छूट गई, भगवान के परम भक्त हो गए, भगवान का दर्शन हुआ चित्रकेतु को मंत्र जपने से।
हम धन्य है महाराज। एक नम्र विनंती ब्रह्मचारी के प्रश्न के रूप में कि हम विदेश में भले ही इस दिसंबर के महीने में क्रिसमस मैराथन के रूप में इसको कहे, लेकिन भारत में ये क्रिसमस कौनो खेत की मूली है लोग जानते नहीं, तो अगर हम इसी को रटते रहे तो उसका प्रचार ही होगा। यदि हम केवल भगवद गीता ज्ञान यज्ञ गीता जयंती के रूप में प्रतिस्पर्धा स्पर्धा के रूप में इसका प्रचार करें तो अच्छा नहीं होगा। एक विनंती है कि वो उस शब्द का उच्चारण ही हम न करें तो कितना अच्छा होगा। गीता जयंती स्पर्धा कहे तो बहुत अच्छा होगा।
क्रिसमस कह करके प्रचार नहीं किया जाता, क्रिसमस के अवसर पर लोग नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, तो ये भगवद गीता भी खरीदें आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उस अवसर का एक लाभ उठाया जाता है। भक्त लोग कोई क्रिसमस के प्रचारक नहीं है, मैराथन एक भगवद गीता के प्रचारक।
ऋषि लोग भूल कर भी हमारे कभी त्योहारों का जन्माष्टमी इत्यादि का उच्चारण कभी नहीं करेंगे, और भारत में जो प्रचार हुआ है ये ईसाई स्कूलों के द्वारा और लोगों के ये मान लेने से कि ये भी एक त्यौहार है, हम सभी का समावेश करेंगे, तो ये मानसिकता कैसी दूर होगी महाराज, जबकि हम लोग कोई लेन देन नहीं है, फिर भी हमारे लोग उस दिन पर एक दूसरे को उपहार देते हैं और वो दिन एक प्रकार से मनाते हैं, ये कैसे दूर होगा?
भगवत गीता जयंती भी दिसंबर में पड़ती है प्राय, इसलिए ये भगवत गीता जयंती पर ही गीता का प्रचार है। वास्तव में भक्तों के मन में क्रिसमस के प्रति बहुत श्रद्धा नहीं है, अगर यह बात होती तो क्रिसमस का प्रचार क्राइस्ट के विषय में कोई भी साहित्य नहीं है, सब भगवान कृष्ण के विषय में, तो यहां जो प्रचार है वो तो जन्माष्टमी का प्रचार है, रामनवमी का प्रचार है, गौर पूर्णिमा का है, गीता जयंती का है, नृसिंह चतुर्दशी, ऐसा ही प्रचार है।
हम धन्य हुए महाराज, धन्य उसने अनुग्रहित उसने।
हरे कृष्णा। प्रजा को राजा का आदेश के बराबर चलना चाहिए, कभी कभी राजा को भी प्रजा का आदेश के अनुसार चलना चाहिए, मतलब चलने की जरूरत रहता है। प्रजा का आदेश पालन करना राजा का मतलब जरूरत नहीं है क्योंकि वह राजा है, लेकिन राजा का आदेश पालन करने शिवाय दूसरा उपाय नहीं है। प्रजा को हमारा आंदोलन इस्कॉन का आंदोलन अमुक अमुक देश में जारी है, वहां भक्त लोग है, वहां का राजा बदलता रहता है, कभी कभी सरकार भी बदलता रहता है, और वो नया कानून जारी करेंगे कि कल से कोई प्रचार नहीं करने का, भगवान का बारे में कोई जप नहीं करने का है, उस वक्त में परिस्थिति में भक्तों को क्या करना चाहिए?
प्रजा का आदेश तो मानना पड़ता है, कभी कभी राजा को मानना पड़ता है, ये प्रजा का ही आदेश है ना कि ये सरकार नहीं रहेगी, दूसरी सरकार बनेगी, ये वोट सिस्टम तो प्रजा का ही एक आदेश है, तो हम लोगों को अपने ही ट्रैक पर रहना चाहिए, हम तो प्रजा है, सरकार का आदेश हो या न हो, परंतु हम लोगों को परम सरकार का आदेश मानना है, भगवान कृष्ण का आदेश मानना है, और कृष्ण के परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी का आदेश मानना है, हमें 16 माला जप करना है कम से कम, भगवद गीता का प्रचार करना है, कोई सरकार हो यही काम करना है।
महाराज अगर सरकार बैन करता है ऐसा एक्टिविटी तो क्या करने का है?
क्या
अगर सरकार प्रचार का एक्टिविटीज बैन करता है, मतलब कोई नहीं करने का ऐसा करता है, समझो मैं हमारा देश के बारे में नहीं बात करता हूँ, लेकिन सरकार बदलता रहता है और वो नया कानून जारी करेंगे कि कोई प्रचार नहीं करेगा, तो भक्त लोग क्या करेंगे?
उस समय भगवान नृसिंह देव का स्मरण किया जाए, और जन आंदोलन होता है ना, यदि कोई सरकार भगवद गीता के विरुद्ध हो जाए तो जन आंदोलन होता है, फिर भी हमें तो करना ही है। जैसे जब ये देश परतंत्र था लोग मीटिंग नहीं कर सकते थे। आपने सुना होगा मैंने अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग मीटिंग कर रहे थे और अंग्रेज ऑफिसर डायरेक्ट आज्ञा दे दिया कि इनको मारो, गोली चलाने का आदेश दिया। फिर भी लोग किए ही, पहले से आदेश हो गया था कि यह खतरा है आप लोग मीटिंग मत कीजिए, लेकिन वे लोग किए। तो हम लोग तो भगवान के भरोसे हैं, जब ऐसा समय आएगा तो फिर भी यही करना है, हम जब करेंगे हमें कौन रोकेगा। जब करना है भगवद गीता का प्रसार करना, रथ यात्रा निकालना, ये सब हम लोगों का काम है, इसमें सरकार को कोई क्षति नहीं है। क्यों रोक लगाएगी? रोक लगाएगी तो फिर और उपाय हैं, बड़े बड़े भक्त सरकार से अपील करेंगे, लेकिन सर्व सामान्य भक्त को ये सोचने की जरूरत ही नहीं। और आप अपने देश की चिंता कीजिए, दूसरे देश की क्यों चिंता कीजिए?
लेकिन हमारे डिवोटी सब देश में है ना प्रभु महाराज।
किसी भी देश में हो तो अपने देश में चिंता करनी चाहिए कि हम कैसे करेंगे भक्ति। यहां कोई बाधा नहीं है, बाधा अपने मन में है, कोई बाधक नहीं। यहां कोई जप करता है उसको मना करने वाला कोई नहीं कि तुम जप मत करो, लेकिन अपना मन मना कर देगा तो आदमी चुपचाप रहे। इसलिए अपना नियम पालन कीजिए,
कृष्ण।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसा आप अभी बता रहे थे प्रभुपाद की बुकों के बारे में, मैं भी 7 साल पहले प्रभुपाद की बुक के द्वारा जुड़ा था, हरे कृष्ण चुनौती, और मैं कथाओं में स्टॉल लगाता हूं जगह जगह, अनेक जगहों पर। मैं प्रभुपाद की बुकों के बारे में कहूंगा, मैंने काफी जगह कथा, भागवत कथा में कंटिन्यू महीने में 25 दिन चालू रहती, जगह जगह जाता हूं, अनेकों जगह भागवत कथा में स्टॉल लगाता हूं, मगर देखता हूं जहां जहां भी कथा होती है जीवन परिवर्तन किसी का नहीं दिखता है। मगर इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, एकदम प्योरिटी है इसमें, तो इस्कॉन में भी जगह जगह कथा होती है, मगर भागवत कथा पर प्रवचन देते काफी जगह, मगर अलग अलग जगह उतना नहीं जितना गीता में प्रभाव है। गीता के द्वारा प्रवचन होता है तो उसे वाक्य में जीवन बदलता है, ये हमने देखा है।
साक्षात भगवान की वाणी है ना
गुरु महाराज जी। मैं आप भक्तों को और सबको ये कहिए कि जो भी है प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूट करे, ये नहीं कि दिसंबर का महीना हो, भगवत गीता नहीं चाहे छोटी छोटी बुक दो, आप अपने बैग में रखो चलते फिरते। मैं महाराज जी जब ट्रेन में जाता हूँ मथुरा वृंदा तो भी बुक रखता हूँ, किसी न किसी को एक दो बुक दे देता हूँ बैठे बैठे प्रचार करते करते। तो आपसे प्रार्थना है महाराज सबको कि प्रभुपाद की बुक कोई साधारण नहीं है, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि सभी लोग प्रसाद पे जोर देते हैं, हमने देखा है प्रसाद खिलाएंगे और भगवत गीता मैराथन में बड़े बड़े कार्टून ले लेते हैं और हम जैसे को फोन करते हैं कि हम आपको आधी रेट में देते हैं, खुद प्रयास नहीं करते हैं। तो महाराज जी आपसे प्रार्थना है प्रभुपाद की बुक को कोई साधारण मत समझो, मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में और मैं भी लोगों को देता हूं और भी लोगों को मैंने दिया है और लोग भक्त बनते हैं प्रभुपाद की ऐसी पुस्तकें। अरे किसी कुछ गलती क्षमा करना महाराज जी।
आप ठीक कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत प्योर भक्त थे और उन्होंने जो कुछ कहा है भगवान की वाणी ही कहा है। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि केवल मैराथन में ही नहीं, सालों भर पुस्तकें रखनी चाहिए और कोई न कोई ले लेता है। ठीक आपने कहा, बहुत लोग ऐसा करते ही हैं, ये सालों भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है, पर विशेष रूप से मैराथन में होता है।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक व्यक्ति ने मेरे को प्रश्न किया था कि जो महाभारत में भगवान को कृष्ण का नाम से प्रस्तुत किया, लेकिन जब भगवद्गीता चालू हुआ इसमें कृष्ण को भगवान वाचक करके संबोध किया, फिर जैसी भगवद्गीता अंत हुआ फिर बाद में फिर कृष्ण वाचक करके प्रस्तुत किया, इसका हमें उनको उत्तर देने पर इसका कारण महाराज।
तो ये तो भगवान की वाणी है ना, और भगवान का नाम है कृष्ण, तो कृष्ण वाचा ये न कहा गया। अगर ऐसा होता तो लोग ये कहते कि कृष्ण एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन भगवान शब्द कह करके वेदव्यास देव ये कहते हैं कि ये छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिनमें सारा ऐश्वर्य है, सारा ज्ञान है, सारा बल है, वैराग्य है, विद्या है, सब कुछ है भगवान में, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान जब कहा जाता है तब तो लोग शंका करते हैं, और जब कृष्ण कहा जाएगा तो और ज्यादा शंका करेंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ करके वेदव्यास देव ने श्री भगवान वाचक कहा, ये भगवान की वाणी है, या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मनाभ बिने सकता, पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से भगवद गीता निकली है।
महाराज और एक प्रश्न, महाराज हम ग्रंथ विधान के गुड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बात जाते हैं, तो हमारे कुछ प्रभु जी है वो 365 दिन गीता जयंती करके लोगों को गीता देते, ऐसा कहना उचित है?
क्या मैं समझा नहीं क्या
कि कुछ हमारा प्रभु जी है बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आते हैं, तो उन लोग कहते हैं कि जब लोगों को गीता देना होता है तो उन लोग कहते हैं कि आज गीता जयंती है, आज भगवान ने गीता कही है तो आप गीता लीजिए, ऐसा कहते हैं, या ऐसा कहना उचित है?
आज भगवद गीता जयंती है।
हाँ महाराज,
नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गीता जयंती को बताना चाहिए कि इस महीने में इस एकादशी मोक्षदा एकादशी को गीता पढ़ती, लेकिन गीता हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में काम आएगी, वो कोई भी दिन हो सब दिन काम आएगी। गीता का जो उपदेश है वो सब समय के लिए और सबके लिए है। कर्म करने के लिए भगवान ने बताया कैसे करना चाहिए, विद्यार्थी के लिए भी और गृहस्थ के लिए भी, ब्रह्मचारी के लिए भी, सबके लिए भगवद गीता है। सभी को सीखने की जरूरत है कि कैसे कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो इन सारी बातों का ज्ञान भगवद गीता में मिलता है, और रोज रोज प्रतिदिन। आज गीता के उपदेश का जो महत्व है वो कल भी है, परसों भी है, सब दिन। गीता बोली गई भगवत गीता जयंती के दिन वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध में मुकर गए तो उनको समझाने के लिए भगवान गीता का उपदेश दिए, लेकिन यह समग्र मानव के लिए है, सबके लिए उपयोगी है, सभी लाभ उठा सकते हैं और सब समय। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में ही इसकी जरूरत है, सभी महीने में, सभी डेट पर। यदि ये कहते हैं कि आज भगवान ने उपदेश किया था तो हम चाहते हैं कि यह कहना उचित नहीं। उपदेश अवश्य आज के लिए है, सब समय के लिए है। भगवद गीता का उपदेश पुराना नहीं होगा, बासी नहीं हो जाएगा, जरूरत है आज के लिए। अर्जुन बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थे पर स्वजनों को देख करके युद्ध से हट गए तो भगवान उनको समझाने लगे। तो हम तो इस प्राकृत जगत में हमेशा युद्ध में ही हैं, लड़ रहे हैं प्रकृति से, इस भौतिक शरीर में बंध गए। तो हमको तो प्रत्येक क्षण जरूरत है गीता, प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, घंटा में गीता की आवश्यकता है। गीता के सहारे हम भगवान को पाएंगे, इस जीवन में सुखी रहेंगे और परलोक में रहेंगे। सबसे पहले जरूरत है अपने मन में दृढ़ विश्वास कि भगवद गीता से ही कल्याण होगा और समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए ही भगवान ने यह उपदेश किया है। वो केवल अर्जुन के लिए नहीं किए हैं। भगवान कहते हैं ना, स्वकर्मणा तम भेच सिद्धि बिंदते मानव मानव, मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, पर हम प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए हमारा क्या कर्तव्य है। प्रत्येक वर्ण में, आश्रम में सब कर्म बताए गए हैं, सभी आश्रम वालों का कर्तव्य है भगवान का नाम रखना है। वही भगवान 500 वर्ष पहले आए थे यहाँ मायापुर में, बंगाल में, उन्होंने खुलम खुला सिखाया कीर्तनी और सदा हरी, सब समय सब दिन भगवान कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। स्वयं कृष्ण ही बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कीर्तनी और सदा हरी, सदा सब दिन सब वर्ष में सब महीने में घर में बाहर में रोड पर सब में कीर्तनी और सदा है, भगवान कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए।
महाराज हरे कृष्ण, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम बाहर प्रचार करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पेशा होता है मछली बेचना या शराब बेचना या कांदा लहसुन बेचना, तो हम प्रचार करते हैं तो वो भक्त भी बन जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को यह भी कहना चाहिए कि आप मछली बेचना छोड़ दीजिए, कांदा लहसुन बेचना, शराब बेचना छोड़ दीजिए, ये कह सकते हैं या नहीं?
नहीं, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन गीता पढ़ने पर देंगे तो सब बात मिलेंगे। प्रभुपाद जी की किसी भी पुस्तक में बात है नियम पालन करना है। मनुष्य का एक कर्तव्य है हिंसा नहीं करना, मांस नहीं खाना, नो मीट ईटिंग, ये तो कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि मांस खा रहा है तो अपने आध्यात्मिक जीवन को वो खतरे में डाल रहा है। ये कहना चाहिए कि नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद खाए और वेजिटेरियन प्रसाद खाए, मांस नहीं खाना चाहिए और इसके साथ ही शराब भी नहीं पीना चाहिए। नो इंटॉक्सिकेशन, जो बेहोश करने वाली चीज है और उस बेहोशी में भगवान का स्मरण नहीं होगा, इसलिए इंटॉक्सिकेशन मना है, प्रभुपाद ने मना किया। ये चार जो नियम है, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और अवैध है इसलिए सब नहीं करना, ये तो सबके लिए नियम है। वो मांस बेचने वाला हो चाहे न बेचने वाला, सबके लिए नियम है। मांस को बेचने वाला, धोने वाला, उसको काटने वाला, पकाने वाला, ये सभी पापी हैं। तो सबको बताना चाहिए कि इस काम को मत करो। मांस बेचना या खाना बराबर ही है।
हरे कृष्ण महाराज जी, हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोग ले तो लेते हैं और फिर बोलते हैं लेके, वो बोलते हैं कि हम मांस खाते हैं तो चलेगा क्या?
मांस खाते हैं कुछ भी जो ले लिए पुस्तक तो वो तो फायदा करेगा पढ़ने पर। असल में इस संसार में सभी अशुद्ध हैं, सब पाप कर्म में लगे हैं, तो हम लोगों को प्रचार करना है पुण्यात्माओं के नाम नहीं। अब ये नहीं खोजना चाहिए कि ये पुण्यात्मा है ये ले, पापियों को तारना यही मुख्य उद्देश्य है। सिखाना चाहिए नम्र भाषा में, ये चार नियम बताना चाहिए, शास्त्र का नियम है, प्रभुपाद ने इसको फैलाया है। जैसे योग के कुछ नियम पतंजलि जी ने बताया, पर वर्तमान युग में रामदेव महाराज उसको फैलाए हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी शास्त्रों में कहे इन चार नियमों को फैलाए हैं। ये चार नियम महाराज परीक्षित ने बताया, कलयुग को कहा कि चार जगह तुम रहो, जहां मांस भक्षण होता है, जहां व्यभिचार होता है, जहां लोग शराब पीते हैं, जहां जुआ खेलते हैं, वहां रहो। तो इन चारों स्थान में कलयुग का वास है। श्रील प्रभुपाद सबसे पहले न्यूयॉर्क में इस बात का प्रचार किए। हिंसा को रोकना चाहते थे, हिंसा सबसे ज्यादा होती है इसलिए कि लोग मांस खाते हैं। मांस आता है जीवों के शरीर से, पशु मांस, पक्षी मांस, ये तो हमारा कर्तव्य है कहना, पर देश काल के अनुसार कहना चाहिए सबसे पहले प्रचार में होना चाहिए कि लोग गीता पढ़ें, भगवान का नाम जपें। नाम जप कोई भी करे वो शुद्ध हो जाएगा।
महाराज, उसी प्रश्न के अनुशीलन करते हुए एक छोटा सा प्रश्न, कि हमारे पुराणों में कई बार कथानक आते हैं कि चलिया छोटा सा बच्चा था, भगवान शंभु महायोगी एक वैरागी का रूप लेके वहां गए और उसको उसकी मां को बोला कि इस बच्चे को काट कर इसको बनाकर मुझे परोसो। कहीं कथानक आता है कि वातापी और बिलवल ये दो राक्षस थे, वो ऋषियों को भुलाते थे और बोलते थे कि आपको बकरे का मांस दिया जाएगा, और वातापी बकरे का रूप लेता था, उसका मांस पकाया जाता था, वो साधुओं उसको ग्रहण करते थे साधु, और उनका पेट फाड़ कर वो बाहर आ जाता था। ऐसी कथानक आते हैं। अगस्त्य मुनि ने भी वो वातापी और बिलवल की आमंत्रण को स्वीकार किया। तो इन कथानकों से हमारे हिंदू धर्म में या हमारे सनातन वैदिक धर्म में ये मान्यता सामान्यतया है लोगों के मन में कि मांस खाना ठीक है, क्षत्रियों के लिए ठीक है, तो इसका प्रतिकार भक्त लोग कैसे करें?
ये बहुत पुराणों के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए,
लोग पढ़ते इसीलिए, और वो प्रश्न पूछते हैं।
भगवद गीता और श्रीमद भागवत अब बस, अन्य पुराणों में बहुत झंझट है, परस्पर विरुद्ध बातें हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बहुमत बहुपुनि पंथ पुराने में जहां तहां झगड़ो से, बहुत पुराण पढ़ेंगे मन कंफ्यूज होगा, पुराणों में झगड़ा है। इसीलिए गुरु कह राम नाम न मोहिनी को लगत राज डगरो से, गुरु ने कहा कि भगवान का नाम जपो, हमको यही राज मार्ग लगता है, तो पुराण नाम नहीं पढ़ना है, भगवान का नाम जपना है। जपने की तो फुर्सत ही नहीं है, पुराण कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा तो और ज्यादा झंझट में पड़ जाएगा।
हम धन्य हुए महाराज। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।